الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان الله بالعزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. ہم بارف القرآن جلد نمبر 5 سے سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، اور ہم پچھلی مجلس جو کہ جمعے کو ہوئی تھی اس میں صفحہ نمبر 528 پر پڑھ رہے تھے، اور آیت چل رہی تھی وَقُلْ جَاءَ الْحَقْ وَزَّهَقَ الْبَاطِلِ. تو پچھلی مجلس کے اندر دعا کے موضوع کے اوپر کافی ساری باتیں ہوئی تھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دعا مانگنا سکھاتے ہیں، یعنی اپنے سے مانگنا سکھاتے ہیں. تو ظاہر ہے، بالکل ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت دینا چاہتے ہیں، تو وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ مجھ سے کیسے مانگو، ٹھیک ہے. لیکن اللہ رب العزت جہاں دینا چاہتے ہیں اور ہمیں سکھاتے ہیں کہ مجھ سے کیسے مانگو، تو وہیں اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ایک شیطان کا نظام بھی بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ شیطان بھی جو ہے نا وہ ہر چیز کے اندر سے ایک غلط پہلو نکال لیتا ہے، اور وہ ہمارے لیے آزمائش ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے آزمائش بن جاتا ہے کہ ہم اس کی مانتے ہیں کہ رب رحمان کے رسولوں کی مانتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا اور اس دنیا کے اندر جو ہے وہ صرف نعمتیں ہی نعمتیں رکھیں اور اچھی اچھی چیزیں رکھیں، اور ہمیں جو ہے نا وہ سکھا دیا کہ مجھ سے ایسے مانگو میں تمہیں دے دوں گا، مجھ سے ایسے مانگو میں تمہیں دے دوں گا، ٹھیک ہے. صرف ایسا نہیں ہے، بلکہ شیطان بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، ٹھیک ہے، اور شیطان کا نظام بھی جو ہے نا وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا. حتیٰ کہ ابھی جو آپ میں سے ہمارے قصص النبیین والی کلاس کو فالو کر رہے ہیں، تو اس کے اندر ہمارے دوست جو قصص النبیین پڑھاتے ہیں ہفتے کے دن، تو انہوں نے کیا بتایا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان کا نظام حضرت آدم علیہ السلام کی جو پہلی اولاد تھی نا وہیں سے شروع ہو گیا تھا، وہیں سے. یعنی ایک تو حابیل اور قابیل والا واقعہ ہے نا، تو اس میں تو چلو کہہ سکتے ہیں یا کسی حد تک جو ہے نا وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے قابیل کو جو ہے وہ اس کے نفس نے بہکایا، اور اس نے جو ہے نا وہ ضد اور انانیت کی وجہ سے حابیل کو قتل کر دیا، اور ٹھیک. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ قابیل جو ہے وہ بھاگ گیا، اور اس نے جو ہے جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا اسی سے اس نے شادی کر دی، اور اس کی نسلوں میں جو ہے وہ شیطانی نظام پورا کا پورا پھیل گیا، حتیٰ کہ وہ جو جو انسانی قبائل بنے نا قابیل کی اولاد سے، اس کی قبیل سے، رائٹ، تو اس میں شیطان نے آ کر کے کیا کرنا شروع کیا. کسی نے کلاس سنی تھی؟ تو کیا کرنا اس نے شروع کیا، بڑی بڑی زبردست بات ہے اس کے اندر، بہت ہی اہم بات ہے. جی بالکل، قابیل کی اولاد کے ساتھ بیٹھ کر وہاں پر اس نے میوزک کانسرٹ شروع کیے، میوزک کانسرٹ شروع کیے، رائٹ. म्यूजिक कॉन्सर्ट्स, ये मौसीकी जो है ना, ये ऐसी चीज है कि जो के हमारी रूह की गिजा है, हमारी रूह की गिजा है। लेकिन कौन सी वाली गिजा, जो कि इस रूह को जो है ना वो पॉइजन कर देती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जो लोग फास्ट फूड को बुरा समझते हैं, फास्ट फूड, राइट, ये बर्गर्स और ये प्रोसेस मीट और ये सारी चीजें, ठीक है, तो ये क्या है, ये गिजा है ना, इसको खाते हैं तो पेट भर जाता है, बल्कि बड़ी मजे की भी लगती है, ठीक है, बड़ी मजे की भी लगती है और पेट भी भर जाता है, यानी भूख मिट जाती है इसको खाने से। लेकिन इसको खाने से क्या होता है कि कितने सारी जो है वो बीमारियां पैदा होती हैं, यानी मोटापा तो उसमें से एक चीज है, उसके अलावा और क्या क्या मसले पैदा होते हैं, ठीक है ना, तो गजा तो वो है ना। तो मौसीकी का भी यही मामला है कि ये ऊपर से बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी जो है ना, अच्छा, जिन लोगों को अच्छी लगती है उनको तो अच्छी लगती है, दीनदारों को चलो अच्छी नहीं लगती। दीनदारों को अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत सारे दीनदार ऐसे हैं जिनको मौसीकी अच्छी नहीं लगती, अगरचे के इसमें तब्दीली आ रही है, दीनदारों के मामला में भी मौसीकी बड़ी तेजी के साथ जो है ना वो घुसाने की कोशिश कर रहा है शैतान। लेकिन दीनदारों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी दीनदारों से भी ये गलती हो जाती है कि वो समझते हैं कि हम तो मौसीकी की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, हम तो मौसीकी सुन नहीं रहे, हम तो अपना काम कर रहे हैं, तो मौसीकी बचती है तो बचती रहे, हमें क्या इससे। नहीं, मौसीकी एक ऐसी चीज है जो कि आपके सिस्टम में एंटर होती है, आप उसको रोक नहीं सकते। जब तक आप मौसीकी की जगह से दूर ना चले जाएं या मौसीकी को बंद ना कर दें, आप इसको अपने सिस्टम में, अपने कान में दाखिल होने से रोक नहीं सकते। तो ये अंदर दाखिल होगी और अंदर ही अंदर जो है ना वो जहर फैला देगी, यानी आपकी रूह को जो है वो बीमार कर देगी, हत्ता के रूह को मार देगी, हत्ता के रूह को मार देगी। ऊपर से आपको लगेगा कि ये तो बड़ी हार्मलेस किस्म की चीज है, स्पेशली जब मैं इसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहा, तो ये तो मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो शैतान जो है ना उसको इस बात का पता है, और वो फिर पूरी पूरी कौमों को जब बर्बाद करने की, यानी उसको जो खुली छूट मिल जाती है ना, तो फिर वो ऐसे सीजनल प्रोग्राम्स करवाता है, मकामी लोग समझ गए होंगे, सीजन्स करवाता है, जिसके अंदर फिर मौसीकी के प्रोग्राम्स होते हैं, और इसके ऊपर इतना एम्फेसिस होता है, इतना एम्फेसिस होता है कि किसी और चीज के ऊपर इतना एम्फेसिस नहीं होता, ठीक है। अगर नेबरहुड में कोई सुने तो कहते हैं जोर से ना बजाओ, मगर मानते नहीं, दुआ करें, राइट, उनसे कह के देख लिया, उन्होंने नहीं बात मानी, आप जो है वो पुलिस को भी नहीं बुला सकती, आप जो है वो कोई और कंप्लेन का सिस्टम भी अगर नहीं इस्तेमाल कर सकती, तो फिर भी अल्लाह ताला से दुआ तो कर सकती है ना, राइट। और अल्लाह ताला की जो पुलिस है, अल्लाह ताला का जो खुदाई फौजदार के डायरेक्ट हवालदार होते हैं, तो वो तो फिर सब कुछ कर सकते हैं। तो जब असबाब हमारे इख्तियार में नहीं होते, तो फिर हमें डायरेक्ट मुसब्बिबुल अस्बाब का दरवाजा खटखटाना चाहिए। यानी मकसद क्या है ये सब बताने का, कि इसको इग्नोर मत करें, इसको हार्मलेस ना समझें, कि नहीं कोई बात नहीं चल रही है, मैं तो नहीं चला रही ना, राइट, मैंने तो नहीं इसको स्टार्ट, नहीं भाई, आपको मारेगी वो, आपकी रूह को वो मारेगी, आपके औलाद की रूह को वो पॉइजन करेगी। तो इस वजह से अगर असबाब से फायदा नहीं हो रहा, तो फिर अल्लाह से मांगे इस चीज को, कह अल्लाह मुझे बचा लीजिए लोगों से, या इनको छुट्टी करवा दीजिए यहाँ से, राइट। Nowadays it is there everywhere in malls. That is why we don't go to malls. That is why we don't go to malls. It is everywhere in malls, but we don't go to malls, right? हम जो है वो ऐसी दुकानों से काम चला लेते हैं कि जहां पर हमें मौसीकी नहीं सुननी पड़ती, या ये कि अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत अता फरमाए जिन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग का सिलसिला शुरू किया है। बाय द वे, ऑनलाइन शॉपिंग जो है ना, ये इस नीयत के साथ कि हमें मॉल्स की मौसीकी से और बेपर्दगी से और बेहयाई से और बदनजरी से हिफाजत हो जाए, ऑनलाइन शॉपिंग को बहुत बड़ी गनीमत समझें, इस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने काफिरों के रास्ते, इस काफिरों के हाथों से ही हमें ये वाला ऑप्शन दे दिया है। तो मॉल्स हरगिज हरगिज जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बंद करें मॉल्स जाना। खुसूसन अगर कभी जाना भी पड़े तो अपने साथ मर्दों को और लड़कों को तो मत लेकर के जाए, लड़कों को तो मत लेकर के जाए, क्योंकि इतनी बेहयाई होती है वहां पर, और यानी इवन सऊदी अरब के अंदर, और कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है, इतनी बेहयाई होती है मॉल्स के अंदर कि जिसका कोई इंतहा नहीं। कुछ लोगों के बारे में हमने सुना, अल्लाह ताला अकल सलीम अता फरमाए या उनको हिदायत अता फरमाए, वो बाकायदा लेके जाते हैं लड़कों को अपने साथ। भाई क्यों, तुम्हारा क्या मतलब यार, सुन सुन करके सुन हो जाते हैं, अभी तक तो अकल में कोई बात ही नहीं आई, सुन किधर से होंगे, वैसे तो पहले से ही सुन हुए हैं ठीक है, लेकिन सुनते ही नहीं है तो कहां से सुन होंगे। सुन सुन के सुन, बात याद रखें, किसी ने मुझे लिखा है कि सुन सुन के लोग सुन हो जाएंगे, आप याद रखें बात, सुनते नहीं है, सुनते नहीं है, सुनेंगे तो फिर सुन होने की नौबत आएगी ना, यहाँ पर तो मसला ये है कि सुनते ही नहीं, कान बंद करके बिल्कुल, राइट। तो फिर जो भी हो, अल्लाह अल्लाह के हवाले, हमें इसकी कोई परवाह नहीं, लोग भाग जाए, जहन्नुम में जाए, भाग जाए, जहां मर्जी आ जाए जाए, ठीक है ना। हमें तो बात बतानी है, अब मर्जी है कि उसके ऊपर अमल करें, उसको माने या ना माने, ये आपके ऊपर है, बॉल इज इन योर कोर्ट, हमने आपके कोर्ट पर बॉल डाल दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद जो है ना, वो मौसीकी, तो शैतान का निजाम जो है ना, वो ऐसा है, अल्लाह ताला ने बनाया है और हमारी आजमाइश के लिए बनाया। अब हमारा काम इस दुनिया की जिंदगी में है इस आजमाइश पे पूरा उतरना, कामयाब होना इस इम्तिहान के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से दुआएं मांगने का तरीका भी बता दिया और सारे अपने खजाने खोल भी दिए, लेकिन शैतान क्या करता है कि फिर दुआ मांगने से ही महरूम करने की कोशिश करता है और दुआ के मतलब को ही बदल देता है, दुआ के तरीके को ही बदल देता है, ठीक है ना। और ये कह देता है कि हाँ बस खजाने हैं और मांगो और तुम्हें मिल जाएंगे, हालांकि ये मशरूत है, मशरूत है, कंडीशनल है ये, ठीक है। तो बहरहाल पिछले जो दर्स में इसके अलावा कुछ और इसमें तफसीली बातें हुई थी, चाहिए कि उनको दोबारा से सुनना है, पहली दफा में समझ में भी नहीं आती है, दूसरी दफा में कम से कम कुछ समझ में आनी शुरू होती है अगर इस नियत से सुना जाए, और फिर बाद में अमल की तौफीक मिलती है। शैतान को कभी ना भूलें, शैतान को कभी भी ना भूलें, यही सारा का सारा, शैतान की सबसे बड़ी कामयाबी ये होती है कि वो हमें अपने आप को भुलवा देता है कि शैतान भी है, और हम समझते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, बस मैं जो हूं, बस मैं ही हूं, मैं मांगूंगा मुझे मिलेगा, मैं नहीं मांगूंगा मुझे नहीं मिलेगा। शैतान को तो ध्यान ही नहीं जाता शैतान की तरफ कि वो क्या क्या चालें चल रहा है, वो क्या क्या मेहनतें कर रहा है मेरे ऊपर। अच्छा आगे हम पढ़ रहे थे कि कुल जा अल्हक तो वजहत अल्बातिल, ये आयत हिजरत के बाद फतेह मक्का के बारे में नाजिल हुई। हजरत इब्ने मसूद रजील तआला फरमाते हैं कि फतेह मक्का के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में दाखिल हुए तो उस वक्त बैतुल्लाह के गिर्द 360 बुतों के मुजस्मे खड़े हुए थे। बाद उलमा ने इस खास तादाद की वजह बताई है कि मुशरिकीन मक्का साल भर के दिनों में हर दिन का बुत अलग रखते थे, उस दिन में उसकी परस्तिश करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पहुंचे तो ये आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक पर थी, जा अल हक व जहफ अल बातिल, हक आ गया और बातिल चला गया, और अपनी लकड़ी एक एक बुत के सीने में मारते जाते थे, ठीक है। बुखारी मुस्लिम की रवायत है, बाज रिवायात में है कि इस छड़ी के नीचे रांग या लोहे की शाम लगी हुई थी, यानी इस छड़ी के एक कोने के ऊपर, नीचे से मुराद एक कोने के ऊपर लोहे की शाम, यानी जिस तरह वो पॉइंटेड जो एज होता है लोहे का मोटा सा, जैसे लट्टू की शक्ल की चीज होती है, तो वो लगी हुई थी। जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बुत के सीने में उसको मारते तो वो उल्टा गिर जाता था, यानी आम छड़ी में तो ऐसा नहीं होता ना, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छड़ी में बाज रवायत से पता चलता है कि ऐसा था, लोहे की चीज लगी हुई थी, तो उससे ना फिर बुत को मारते थे, यहां तक कि ये सब बुत गिर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनके तोड़ने का हुक्म दे दिया, यानी खाली गिराने पे इक्तफा नहीं किया बल्कि उनको क्रश भी करवा दिया। अब इसके तहत जो है वो शरीयत का मसला लिखते हैं कि शिर्क को कुफर और बातिल की रसूम व निशानात का मिटाना वाजिब है। शिर्क कुफर बातिल, ठीक है, ये तीन बहुत करीब करीब के अल्फाज हैं, ठीक है। शिर्क और कुफर तो बिल्कुल एक ही किस्म की चीज है, एक ही चीज है बाकी, ठीक है। कुफर होता है वही शिर्क होता है, शिर्क होता है वही कुफर होता है, बाकी इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेटेड किस्म की डिफरेंसेस वगैरह लिखे हैं उनके हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते, बस इतना ही काफी है हमारे लिए। ये शिर्क और कुफर सेम चीज होता है। और बातिल जो होता है ये हर किस्म के, जिसके अंदर शिर्क कुफर से लेस दर्जे की भी जो 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 गुनाह है, तो उनमें भी फिर बातिल की रसूमात और निशानात वगैरह शामिल हो जाती हैं, तो इनका मिटाना जो है ना ये वाजिब है। तो अब इसकी तफसील क्या है कि इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इस आयत में इसकी दलील है कि मुशरिकीन के बुत और दूसरे मुशरिकात को मिटाना वाजिब है, और तमाम वो आलात बातिला जिनका मसरफ सिर्फ मासियत हो उनका मिटाना भी इसी हुक्म में, मुशरिकीन के बुत और दूसरे मुशरिकाना निशानात को मिटाना वाजिब है। मतलब जो उनकी इबादत गाहें हैं तो उनकी इबादत गाहों को तो हमेशा से ही छोड़ा गया कि जिसके अंदर वो इबादत करते हैं, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज के जो मुशरिकीन अगर आपके मुल्क में रहते हैं सिवाय के क्या कहते हैं जजीरतुल अरब के, ठीक है, यहाँ पर जो है वो इनका रहना मना कर दिया गया, लेकिन इसके अलावा ठीक है, यानी यहाँ पर इनकी इबादत गाहें बनाना इसकी इसकी ममानियत है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो है जहाँ पर भी मुशरिकीन रहते हैं तो वो अगर वो मुसलमानों को जिजिया देते हैं, टैक्स देते हैं, तो फिर उनकी इबादत गाहों की भी हिफाजत होती है, उनकी जानों की और मालों की भी हिफाजत होती है। लेकिन उसके अलावा जो सड़कों के ऊपर बुत बनाना, ठीक है ना, मॉल्स के अंदर जो है वो बुत बनाना, या जो है वो दूसरे मुकाम के ऊपर इस तरह की चीजें बनाना, ये इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। मुसलमानों ने अगर इसको जायज किया है तो ये उनका अपना फेल है, इस्लाम दीन इस्लाम के अंदर इसकी इजाजत नहीं। तो मुशरिकीन के बुत और दूसरे मुशरिकाना निशानात को मिटाना वाजिब है, और तमाम वो आलात बातिला जिनका मसरफ सिर्फ मासियत हो, यानी जिनसे कोई और काम ना लिया जा सकता हो सिवाय गुनाह के काम, ठीक है, सिवाय गुनाह के काम के और कोई दूसरा काम ना लिया जा सकता हो ना, तो उनका मिटाना भी इसी हुक्म में है कि जैसे कि बुत, ठीक है, बुतों से जो है वो दूसरा काम नहीं लिया जाता बल्कि शिर्क और मासियत का काम किया जाता है। उसी तरह से इनका भी इसी वजह से जब अच्छे दौर थे ना तो फिर वो जो मैनिकन्स होती थी ना जिनके ऊपर ये कपड़े वपड़े डालते हैं, तो अच्छे दौर के अंदर वो मैनिकिन जो होती थी वो बस ऐसा होता था कि ऐसी चीज होती थी कि जिसके ऊपर बस कपड़ा जो है ना वो लटक सके, यानी नॉट लाइक हैंगर्स, एक तरह का वो एक थ्री डायमेंशनल हैंगर ही होता था, ठीक है। अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जब शयातीन की इन्वॉल्वमेंट बढ़ी तो फिर वो मैनिकिन के ऊपर फिर सर भी लग गया, ठीक है। अब सर जब लग गया तो फिर उसके बाद उसके ऊपर आंखें बना देना और नाक बना देना और मुंह बना देना, ये अगला दर्जा। तो तदरीजन जो है ना फिर इस तरह की चीजें आती हैं, पहले जो है वो बेसर के मैनिकिन्स, मैनिकिन्स होता वो जो क्या कहते हैं उसको डॉल्स जो जिनके ऊपर कपड़ा या अबाया चढ़ा देते थे और कपड़ा चढ़ा देते थे, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है वो जायज नहीं होती हैं। इब्ने मंजर ने फरमाया या इब्ने मंजर ने फरमाया कि तस्वीरें और मुजस्समे जो लकड़ी पीतल वगैरह से बनाए जाते हैं वो भी बुतों ही के हुक्म में हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर्दे को फाड़ डाला जिस पर तस्वीरें नक्शो रंग से बनाई गई थी, इससे आम तस्वीर का हुक्म मालूम हो गया। यानी तस्वीरें ड्रॉ करना, हत्ता के जो इवन अगर कैमरे की तस्वीर है उसको भी जो है वो कागज के ऊपर प्रिंट करना, ये भी जायज नहीं है। सिर्फ डिजिटल तस्वीर जो है वो उसकी जवाज का जो है ना वो आज के दौर के अंदर फतवा है डिजिटल डिजिटल तस्वीर का। क्यों? क्योंकि डिजिटल तस्वीर जो होती है यानी आपके स्क्रीन के ऊपर जो होती है, फोन की स्क्रीन हो यानी कंप्यूटर से जो बेसिकली आती है ना, ठीक है, उसका क्या है कि वो असल में होती नहीं है, वो लाइट पिक्सल्स होते हैं जो कि तस्वीर की शक्ल में जो है वो लाइट अप हुए हुए होते हैं, रोशन हुए हुए होते हैं, और जैसे ही आप फोन का एक बटन दबाएंगे या उसका जो है वो स्क्रॉल करेंगे तो वो खत्म हो जाता है फिर उसके बाद, ठीक है। तो उसकी कोई फिजिकल फॉर्म है ही नहीं, उसकी कोई यानी फिजिकल फॉर्म ही कहेंगे ना उसको, ये है ये नहीं उसकी, वो तो बस लाइट्स हैं, और वो लाइट्स भी थोड़ी देर के अंदर मतलब इमीडिएटली खत्म हो जाती है। तो उसकी फिर जवाज का फतवा भी आज के दौर में अक्सर मतलब अक्सर कहें या बहुत उलमा ने दिया हुआ है, और उसका फिर इस्तेमाल भी हो रहा होता है, जैसे यूट्यूब के ऊपर भी या वीडियोज होती हैं, और उसके ऊपर दीनी प्रोग्राम वगैरह भी जो है वो नशर किए जा रहे होते हैं। और तो लेकिन इसके अलावा तस्वीरें जो है वो खास तौर पे हाथ से बनाई हुई तस्वीर, तो ये तो बिल्कुल ही यानी उसकी इजाजत नहीं है। तो आम तस्वीर का हुक्म मालूम हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आखिर जमाने में तशरीफ लाएंगे तो सही हदीस के मुताबिक सलीबों को तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, ये सब उमूर इसकी दलील है, इसकी दलील है कि शिर्क को कुफर और बातिल के आलात को तोड़ना और जाया कर देना वाजिब है। यानी ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो आकर के क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि ये जायज नहीं थी। ठीक है, यानी सिंबल्स जो होते हैं जो कि खास किसी दीन की तरफ ही पॉइंट करते हैं, ऐसे सिंबल जैसे सलीब, ठीक है, और यहूदियों का जो है वो स्टार ऑफ डेविड, ठीक है, वो दाऊद अलैहिस्सलाम का सितारा, तो उसको लोग कहते हैं स्टार ऑफ डेविड। तो ये खास खास जो है ना वो मजहब के ही सिंबल्स हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि या तो किसी खास मजहब के साथ नहीं है, बस वो एक जनरल सी चीज है, और कुछ लोगों ने जो है वो उसको अपनाना शुरू कर दिया, लेकिन किसी को पता भी नहीं है उनके बारे में। ठीक है, जैसे बुद्ध मत के कुछ सिंबल्स का भी पता चला, आपने से किसी से बात भी हुई थी घर वालों की, तो उसका लोगों को पता भी नहीं है कि वो उसका ताल्लुक जो है वो बुद्ध मत के साथ है, लेकिन उन्होंने जो है ना वो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया मुख्तलिफ चीजों के अंदर, तो उसका पता भी नहीं है। सलीब का सबको पता है, सलीब एक ऐसा सिंबल है जिसका सबको पता है। तो इस वजह से खुसूसन आप लोग भी इसका ध्यान अगर रखें कि आपके घरों के अंदर हो सकता है ऐसे तकिया गलाफ हो, ठीक है, कुशन कवर्स के जिनके ऊपर सलीब का निशान बना हो, ये अजीब, या तो ये लोग बिल्कुल बेध्यानी में बनाते हैं या जानबूझ करके बनाते हैं, अल्लाह आलम। ठीक है, कि भाई तकिया गलाफ आपने बनाए, आप उसके ऊपर सलीब का सिंबल क्यों बना रहे हैं, क्रॉस क्यों बना रहे हैं? अब क्रॉस के लिए जरूरी नहीं है कि जो वर्टिकल क्रॉस, वर्टिकल जो बार होती है उसके अंदर यानी नीचे से ऊपर उमूदी, वो ज्यादा लंबी हो और जो हॉरिजॉन्टल बार है वो छोटी हो, कोई जरूरी नहीं है क्रॉस के लिए। इनका जो ईसाइयों का जो क्रॉस है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल भी होता है, यानी दोनों जो है ना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वो दोनों इक्वल भी होते हैं। ठीक है, तो अक्सर देखा गया कि ये कुशन कवर्स के ऊपर जो है वो क्रॉस का निशान का डिजाइन बनाया हुआ होता है। ठीक है, पता हमें भी नहीं था, बहुत पहले की बात है, आज से कोई 20-22 साल शायद पुरानी बात है, कि हमारे घर में हमारे हजरत तशरीफ था, ठीक है, अमेरिका में रहते थे हम, तो वहां पर जो है ना वो जो लिविंग रूम के अंदर बैठे हुए थे, तो एकदम से ना एकदम से हजरत के चेहरे का रंग बदल गया, और गुस्सा, और मेरे यानी हाथ पैर फूल गए जिसको कहते हैं। मैंने कहा क्या हो गया भाई, हजरत ने कहा ये तकिया खिलाफ ये कहाँ से आएगी, तुम्हारे घर में कहाँ से आएगी? मैंने कहा भाई हमारे पाकिस्तान से ना हमारे किसी रिश्तेदार बुजुर्ग ने जो है वो तोहफतन भेजा था हमें। ठीक है, तो मैंने कहा जी वो वहां से आया हजरत, निकालो इसको अपने घर से, निकालो इसको। तो क्यों बताया, ये इसके ऊपर सलीब बनी हुई है। ठीक है, तो अब पाकिस्तान से आया था, हम उस वक्त अमरीका में रहते थे, हमें हमें वहमो गुमान भी नहीं था कि ये क्या चीज है, हमने कभी गौर से देखा ही नहीं उसको इस तरह से। ठीक है, लेकिन हजरत ने घर से निकलवा दिया और हमने फौरन अलहमदुल्ला उसको निकाल दिया। अभी थोड़े दिन पहले बच्चे ने बताया कि जिस इस तरह में हम गए थे अपना, हम लोगों का फैमिली गैदरिंग वगैरह थी वहां पर, तो वहां पर जो तकिए थे अब वहां पर भी यही वाले निशान थे, तकियों के ऊपर यही सलीब के निशान थे। ठीक है, तो अब उससे अंदाजा हुआ कि ये कोई बहुत ही यानी एक कॉमन किस्म का डिजाइन है। तो बहरहाल इस किस्म के जो भी कमजोरी उनको खत्म कर देना चाहिए अपने घरों से, खाली तस्वीरों का मामला नहीं, तस्वीरों से भी आगे बढ़ करके। अच्छा, तो के बारे में जाहिर है इस दौर के अंदर जो है ना वो जी इस टाइप के एग्जैक्टली चेकर्स डिजाइन भी सही नहीं है। चेकर्स डिजाइन तो वो तो स्क्वायर्स होते हैं ना। नहीं, उसका तो मुझे नहीं मालूम। वो तो बेसिकली ऐसे ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स है। तो ब्लॉक्स में ना होने की क्या वजह, मैं तो नहीं समझ। आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्रॉस जिसको कहते हैं, वो बेसिकली प्लस साइन होता है, ठीक है, या ये के बीच का एक लंबा होता है और साइडवेज होता है। हॉरिजॉन्टल छोटा होता है, वर्टिकल लंबा होता है, या सिमेट्रिकल होता है, चारों तरफ का एक ही होता है साइज। अच्छा, तस्वीरों के साथ आज के दौर के अंदर बहुत ज्यादा जो है ना वो रिलैक्सेशन हो रही है कि प्रिंटेड तस्वीरें भी होंगी, घरों के अंदर भी तस्वीरें रखी हुई होंगी, अपने इवेंट्स की भी जो है वो तस्वीरें ले ले करके जो है वो लोगों का, यानी बहुत ही महबूब मशगला है। ये महबूब मशगलों में से एक मशगला है कि तस्वीरें लेनी है, हर जगह की तस्वीरें लेनी है। और अब तो यानी इतना अजीब, यानी इनफरादी किस्म की जिंदगी अब हो रही है ना। बस एक फोन होता है और आप होते हैं, और आपकी सारी जिंदगी जो है वो फोन के गिर्द घूम रही होती है, और फोन आपके गिर्द घूम रहा होता है। फोन कैसे गिर्द घूमता है? तो वो ना हम देखते हैं अक्सर सड़कों के ऊपर, कोई खड़े हुए हैं या कोई खातून खड़ी हुई है, कोई मर्द खड़े हुए हैं, और वो जो है वो फोन से जो है वो अपना पैनोरामिक जो है ना वो वीडियो बना रहे हैं। वो वीडियो बनाते रहते हैं और उसको अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। कभी तो मैप्स की एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड करते रहते हैं, कभी अपने जो है वो टिकटॉक पता नहीं चैनल बनाए हुए होते होंगे, या यूट्यूब के चैनल बनाए हुए होते होंगे, या क्या है। हर वक्त फोन के साथ जो है वो उसके अंदर कैमरा मौजूद है, हर वक्त तस्वीरें, हर वक्त की वीडियोस, ठीक है। तो इसमें बस हम तो फिर अब यही कहते हैं कि भाई अब ये फतवा वतवा तो लोगों को समझ में नहीं आता। हम तो सीधे सीधे जो है ना वो हमने अब जादू से डराना शुरू कर दिया, ठीक है। और हकीकत है, मैं डराना को ऐसी बेवकूफ ऐसी यानी झूठ मूठ में नहीं डरा रहे। हकीकत ये है कि इवन इन डिजिटल तस्वीरों के जरिए से भी इंसान के ऊपर जादू हो सकता है, बदनजरी हो सकती है, यानी बुरी नजर का लग जाना, ठीक है, जिससे कि फिर इंसान की तबीयत खराब हो जाती है, इंसान की जो है वो हसद की जो नजर होती है ना वो लग जाना, इवन इन डिजिटल तस्वीरों के जरिए से भी, ठीक है। तो अपनी तस्वीरों की हिफाजत करें, अपनी औलादों की हिफाजत करें, कि उनकी तस्वीरें ले ले करके जो है वो हर वक्त प्रोफाइल फोटो पे लगाते रहते हैं। एक तो औरतों के ऊपर तो वैसे ही पर्दा फर्ज है, औरतों के ऊपर पर्दा फर्ज है, तो औरत तो अपनी तस्वीर लगा ही नहीं सकती। और अजीबो गरीब किस्म की यानी इंतहा दर्जे की बेवकूफी के बुरके में कुछ माशाल्लाह बुरके वालियां होती हैं, वो बुरके के साथ जो है वो तस्वीर लगा रही होती है, राइट। उनको अभी तक समझ में नहीं आई ये बात कि ये काला बुरका या कोई और बुरका पहन लेना ये पर्दा नहीं होता। पर्दा औरत के वजूद को मर्दों से दूर रखना, राइट, ये पर्दा होता है। और बुरका पहन करके मर्दों के सामने आना, ये सिर्फ जरूरत के तहत जायज है, ये सिर्फ जरूरतन जायज, ठीक है। जब आपको किसी जरूरत से बाहर निकलना होता है, चाहे वो ग्रोसरी शॉपिंग के लिए निकलना हो, चाहे रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए निकलना हो, चाहे हज उमरा करने के लिए निकलना हो, चाहे और किसी दीनी दुनियावी काम के लिए निकलना हो, ये सब जरूरियात के अंदर शामिल, ठीक है। लेकिन इंटरनेट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर अपनी तस्वीर लगाना बुरके के साथ, ये कहां से जरूरत बन गया? ये कैसे जरूरत बन गया? ये तो इसकी जरूरत तो मर्दों को नहीं होती है, औरतों को कहां से इसकी जरूरत पड़ गई कि वो अपनी तस्वीर जो है अपने प्रोफाइल फोटो के ऊपर लगा रही है बुरके के साथ, राइट। तो ये पर्दा नहीं है कि बुरके के साथ जो है वो तस्वीर लगाती फिर रही है, ठीक है। तो पर्दे का हुक्म तो एक चीज हो गई, दूसरा ये है कि जब आपको कोई देखता है ना तो आपके फिर नजर लगती है आपके ऊपर, और कोई उसके ऊपर फिर जो है वो जादुई कलमात पढ़ करके जो है ना वो आपकी तरफ फूंक देगा ना, तो फिर उसके बाद बहू हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर आपको कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि आपने अल्लाह की नहीं मानी थी, क्योंकि आपने अल्लाह की नहीं मानी थी। अब कहाँ से हिफाजत आएगी अल्लाह की, ठीक है ना। कहते हैं बड़ा अल्लाह की हिफाजत, अल्लाह की हिफाजत होती है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह के बंदे, तुमने अल्लाह के हुक्मों की हिफाजत करी है, जो अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेंगे। अल्लाह की हिफाजत मशरूत है, अल्लाह ताला की हिफाजत कंडीशनल है, हमारी मनमर्जी के मुताबिक अल्लाह की हिफाजत नहीं होती है। तो तुमने कौन सी कंडीशन पूरी करी है जो कि अल्लाह ताला अपनी कंडीशन का जो 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 जजा है वो पूरी करेगा? क्यों करेगा, राइट। तो अल्लाह ताला की कोई हिफाजत नहीं होती है। ठीक है, तो इस वजह से तस्वीरों का जो शौक है, जो तस्वीरों का जौक लगा हुआ है, जो तस्वीरों की लत लगी हुई है ना, उसको खत्म करें, हमारे हक में बेहतर है। और आखिरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को भूलने की सलाहियत अता फरमाई, भूलने की सलाहियत अता फरमाई, ये अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है कि इंसान भूल जाता है। राइट, दुनिया में किसी का कुछ पता नहीं होता कौन कब चला जाए इस दुनिया से, ठीक है ना, किसी का कुछ पता नहीं होता। तो जब इंसान चला जाता है ना, जिससे कि बहुत मोहब्बत होती है, तो बहुत ज्यादा गम होता है, बहुत दुख होता है, लेकिन वक्त के साथ ये मुंदमिल हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। वक्त जो है वो सबसे बेहतरीन मरहम होता है, वो इंसान को भुला देता है। और ये हमारे हक में बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है कि हम भूल जाते हैं, हमारी जिंदगी बैक टू नॉर्मल आ जाती है। ठीक है, जिंदगी बैक टू नॉर्मल आ जाती है, लेकिन तस्वीरें ये भुलाने नहीं देती, ये भूलने नहीं देती। राइट, तो हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो कि बहुत बड़े आला तरीन दर्जे के दीनदार थे, लेकिन तस्वीरों की लत में मुब्तला थे, तो वो उनकी जिंदगी नॉर्मल हो ही नहीं पा रही थी। सालों गुजर गए, हम हैरान कि इतने मुत्तकी परहेजगार नजर आते हैं, इतना इल्म वाले, इतना सब कुछ वाले, लेकिन इनकी जिंदगी नॉर्मल क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि फिर यही सब पता लगा, नजर आया बाकायदा कि उन्होंने तस्वीरें रखी हुई थी, और वो देखते रहते थे तस्वीरें, हर वक्त तस्वीरें देखे चले जा रहे हैं अपने लव्ड वन की, जो कि दुनिया से चला गया, चली गई, उनकी जिंदगी बिल्कुल मुअत्तल होकर के रह गई। ठीक है, तो इन तस्वीरों के शौक को जो है ना वो खत्म कर दें, इसी के अंदर खैर है। दूसरी चीजों की ले ले बेशक, चले, अगर इतना ही शौक है तो बस, जो इंसानों के अलावा दूसरी चीजें होती हैं, नज़ारे होते हैं और पहाड़ होते हैं और बादल होते हैं और ये सब होते हैं, उनकी ले लें। हाँ, इन्होंने लिखा भी है, पूछा भी है कि अपनी पिक नहीं लेनी चाहिए, मगर किसी नेचर की पिक्चर ले सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं, बिल्कुल, उसमें उसमें कोई शरी हर्ज नहीं है। बस ये है कि ये जो एक शौक है ना, मतलब तस्वीरें लेने का, ये फिर इंसान को कहीं फंसा के ही रखता है बेसिकली। ठीक है, तो दूसरे भी तो काम है ना जिंदगी के अंदर करने के, तो इंसान अपने आप को दूसरे कामों के अंदर मजबूर करें। बहरहाल, आगे फरमाते हैं कि वनु नज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफा, ठीक है, कि हमने नाजिल किया कुरान को जो के शिफा है। कुरान करीम का कुलूब के लिए शिफा होना, कुलूब के लिए, कुलूब का मतलब क्या होता है, रूहानी कल्ब, रूह का जो एक सदर मुकाम होता है ना, उसको कल्ब कहते हैं, कैपिटल सिटी ऑफ द स्पिरिट, उसको कल्ब कहते हैं। तो कुलूब के लिए शिफा होना, शिर्क व कुफ्र और अखलाक रजीला और अमराज बातिना से नफूस की निजात का जरिया होना, तो खुला हुआ मामला है और तमाम उम्मत इस पर मुत्तफिक है। ठीक है, कि कुरान मजीद के अंदर रूहानी शिफा है, रूहानी तकवियत है, और रूह की जो है वो गजा, गजा सही मानों में क्या है, वो कुरान मजीद है। ठीक है, इसी वजह से कुरान मजीद की तिलावत सुनना जो है ना, ये बिल्कुल जिस तरह मौसीकी जो है वो रूह को अंदर दाखिल होकर के खत्म कर देती है, उसी तरीके से कुरान मजीद जो है ना, ये रूह को अंदर दाखिल होकर के तकवियत अता फरमाता है। ठीक है, तो कुरान मजीद के सुनने से जो है वो बहुत ज्यादा फायदा होता है इंसान को रूहानी तौर पर, और फिर उसके मानी और मारिफ को पढ़ना, और उसके अंदर से अपने लिए जो है वो हीरे मोती तलाश करना कि मेरी जिंदगी में इसकी कैसी एप्लीकेशन है, तो ये तो फिर नूरुन अला नूर होता है, यानी खाली सुन लेना अल्फाज कुरान का ये नूर है, तो मानी कुरान का सुनना और समझना ये नूरुन अला नूर। ठीक है, लाइट अपॉन लाइट, तो इससे फिर इंसान की रूहानी इस्लाह होती है, नफूस वो अमराज बातिना से बचते हैं, यानी शहवत इंसान की खत्म होगी, गैर शरी, और जो है वो गुस्सा गैर शरी जो होता है वो वाला खत्म होता है, तकबुर की जो है इस्लाह होती है। ये तो खुला हुआ मामला, यानी ये तो बाहर बदीही है, बिल्कुल क्लियर है, इसके अंदर तो किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है, तमाम उम्मत इस पर मुत्तफिक है। अच्छा, और बाज़ उलमा के नजदीक कुरान मजीद जिस तरह अमराज बातिना की शिफा है, यानी बातनी अमराज रूहानी अमराज की शिफा है, उसी तरह अमराज जाहिरा की भी शिफा है, जिसको जिस्मानी अमराज कहा जाता है, कि आयात कुरान पढ़कर मरीज पर दम करना और तावीज लिख कर गले में डालना अमराज जाहिरा के लिए भी शिफा होता है। तावीज लिख करके गले में डाल, यानी कुरान मजीद कागज में लिख करके उसको जो है वो फोल्ड कर लेना और किसी चीज के अंदर उसको बंद कर देना और फिर बकायदा लटका लेना, ठीक है ना। ये लोग जो शिर्क कहते हैं ना, ये अपनी कम इल्मी की वजह से कहते हैं या अपनी कुछ नीयत की खराबी की वजह से इस तरह की बातें करते हैं, ये बिल्कुल साबित है सहाबा कराम के अमल से, ये बात साबित है। और हम अपना दीन सहाबा कराम से लेते हैं, आपसे नहीं लेते, ठीक है, हम सहाबा कराम से अपना दीन लेते हैं। तो तावीज किस तरह का, जो तावीज है ना जिसके अंदर कुरान मजीद की आयात लिखी हुई हो, तो ये बिल्कुल जायज है, ठीक है। बाकायदा लटकाना, इसको गले में डालना या हाथ में जो है वो बांध रहना, ठीक है, और इसके जो है वो अमराज जाहिरा के लिए भी ये शिफा होता है, ठीक है। पढ़ करके दम करना, ये तो नबी अलैहिस्सलाम की अपनी जाती अमल से साबित है। नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो मौबज़तैन पढ़ करके अपने हाथों के ऊपर दम करते थे और पूरे बदन के ऊपर उन हाथों को जो फेरा करते थे, और आखिरी वक्त में जो है हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पढ़ा तो खुद, लेकिन दम नबी अलैहिस्सलाम के हाथों के ऊपर किया, यानी फूंक मार देना, दम करने का मतलब है फूंक मार देना, तो हाथों पे दम किया और नबी अलैहिस्सलाम के हाथों को ही नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक के ऊपर फेरा, नबी अलैहिस्सलाम की जो जो जिस्मानी उस वक्त तबीयत खराब हो रही थी उसकी शिफा की नीयत से, ठीक है। तावीज लिख करके डालना जो है ये गालबन हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला के अमल से साबित है, ठीक है, क्योंकि पढ़ के फूंक देना ये तो पहले से हो रहा था ना, नबी अलैहिस्सलाम भी करते थे और दूसरे सहाबा कराम भी करते थे, लेकिन जो छोटे बच्चे थे वो खुद नहीं पढ़ पाते थे, तो फिर जो सहाबा थे वो लिख करके उनके गले में डाल देते थे, ठीक है ना, ये उन लोगों के लिए जो कि खुद नहीं पढ़ पाते थे। वही चीज जो है वो बाद में तावीज कहलानी शुरू हो गई। तावीज का लफ्ज यानी आउजू, ठीक है, मैं पनाह मांगता हूँ, आजा यऊजू, ठीक है, पनाह मांगने से यानी किसी किसी तकलीफ से जो है वो निजात मांगना, किसी की पनाह मांगना, अल्लाह ताला की पनाह मांगना, आऊज़ु बिल्लाही या आऊज़ु बिकलिमातिल्लाही, ये भी हदीस मुबारक के अंदर है कि मैं अल्लाह ताला के कलिमात से जो है वो पनाह हासिल करता हूँ, ठीक है। तो आऊज़ु बिल्लाही भी है और आऊज़ु बिकलिमातिल्लाही भी है, और कलिमातिल्लाही क्या है, कुरान मजीद, राइट। तो इस तरह से तावीज़ पढ़ना, लिखना, गले में डालना अमराज जाहिरा के लिए भी शिफा होता है। रिवायात हदीस इस पर शाहिद हैं, तमाम कुतुब हदीस में अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की यह हदीस मौजूद है कि सहाबा कराम की एक जमात सफर में थी, किसी गांव के रईस को बिच्छू ने काट लिया था, लोगों ने हजरत सहाबा से पूछा कि आप कुछ इसका इलाज कर सकते हैं, तो उन्होंने 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर उस पर दम किया, मरीज अच्छा हो गया, ठीक है, 7 मरतबा पढ़ के दम किया। अब 7 के बारे में जो है वो हमारी उलूमुल कुरान वाली जो क्लास चल रही है उसमें काफी बात हो चुकी है कि 7 का जो अदद होता है अरबी जुबान के अंदर उससे मतलब होता है कि एक यानी बड़ी तादाद, ठीक है। बहरहाल एग्जैक्ट 7 मरतबा ये तो बहुत ही, एक पढ़ करके दम करना है तो इससे तो अंदाजा यही होता है कि एग्जैक्ट 7 टाइम्स जो है वो पढ़ के दम किया होगा। बहरहाल फिर रसूलुल्लाह, यानी कहने का मकसद ये था कि 7 दफा ही क्यों किया, 6 दफा क्यों नहीं किया, 8 दफा क्यों नहीं किया, 5 दफा क्यों नहीं किया, 7 ही दफा क्यों नहीं किया, ठीक है। तो 7 दफा के अंदर ये हिकमत हो सकती है कि भाई 7 कर लिया तो गोया कि ज्यादा दफा कर लिया, ठीक है, तो वो 7 के ऊपर दफा हो गया। बहरहाल फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इसका तذکرہ आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम के इस अमल को जायज करा, ठीक है, यानी अच्छा किया, ठीक है, और जो बंदा भी जो है वो ठीक हो गया। तो यानी कुरान मजीद से जो है वो जाहिरी मर्ज के अंदर भी शिफा और इस तरह से के किसी के कांटे के ऊपर शिफा, ये सब भी इस्तेमाल की जा सकती है। इन्होंने लिखा है कि हजरत तो फिर सऊदीया में तावीज क्यों अलाउड नहीं है, किसने कहा आपको कि अलाउड नहीं है सऊदीया में, सऊदीया तो एयरलाइन का नाम है बाय द वे, एयरलाइन में तलाशी लेते हैं कि आपके जेब में तावीज तो नहीं है कहीं, ठीक है। और मुल्के सऊदिया, तो मुल्के सऊदिया के अंदर तो भाई किसने कहा कि नहीं आना पड़ेगा, यानी ये अजीब कहाँ से बातें फैल फैल जाती। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है, पता आपको पता भी नहीं है कुछ कि सऊदिया में अलाउड है कि नहीं है। सही है भाई, ये जो जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं ना, जो कि है नहीं अहले हदीस लेकिन अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, या अपने आप को सलफी कहते हैं, ठीक है, तो उनके यहाँ जो है ना वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने जरा चीजों की कुछ लिटरल मीनिंग लेकर के बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा एक्सट्रीम पे जा करके उन्होंने काफी सारी चीजों को जो है ना इस तरह का किया हुआ है कि नहीं जी अलाउड नहीं है, जी अलाउड नहीं। उनके सामने दलील रखो तो उनके बाद जवाब नहीं होता फिर इसका, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। ठीक है, अच्छा बाय द वे यहाँ पे झाड़ फूक होती है बड़ी जबरदस्त किस्म की, आपको पता है, और बल्कि हुकूमती इदारों की तरफ से झाड़ फूक का इंतजाम है पूरा का पूरा, पता है आपको, नहीं पता तो आपको बता देंगे कहाँ पे जाकर के झाड़ फूक आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो भाई उसके अंदर जो हमारे यहाँ का मसला नहीं है, हर जगह मसला है, जिसके अंदर शिर्क और बिदत को दाखिल कर दिया, किसी सुन्नत अमल को लेकर के जो है वो उसके साथ शिर्क को जो है वो आपने मिक्स कर दिया, तब वो चीज ऑफ कोर्स नाजायज है। वो सिर्फ सऊदीया में अलाउड नहीं नहीं है, बल्कि वो हर जगह मना है भाई। वो हमारे उलमा बहुत ही शद्दोमत के साथ इस किस्म के जो बिदआत और खराफात और मुशरिकाना चीजें जो हैं उनकी नफी करते हैं। ठीक है, मसला तावीज के साथ ये हो जाता है कि आप गलत पीर के पास चले गए, किसी बिदती पीर के पास चले गए, किसी शिरकिया जो है वो अफाल करने वाले पीर या इस किस्म की दरगाह शरगाह के ऊपर चले गए। ठीक है, तो अब जो है ना वो आपको जो तावीज कह के देते हैं ना उसके अंदर कुछ पता नहीं होता कि क्या है उसके, ठीक है ना, अब वो उसके अंदर जादुई कलमात लिख करके उसको मोड़ तोड़ करके जो है वो आपको पहनने के लिए दे दें, आपको क्या पता। ठीक है, और उसके अंदर कोई जो है वो यानी और उल्टी सीधी चीज को लिख करके दे दें आपको, आपको क्या पता। तो भाई आपका मसला ये है कि आप ऐसी जगह गए क्यों, ठीक है ना, तो जाली पीर तो फिर जाली दवा ही देगा ना, और वो जाली दवा जो है वो तो जायज नहीं होगी, उसको तो खा करके आपका पेट ही खराब होगा यार, ये तबीयत खराब होगी। अभी हमारे किसी जानने वाले ने दुआ के लिए लिखा कि भाई वो जाली दवा खा करके मेरी तबीयत शदीद खराब हो गई है, ठीक है ना, तो अब इसका मतलब ये है कि दवाओं को बंद कर दिया जाए, नहीं, कि जाली दवा खा करके तबीयत खराब हो जाती है, तो अब से जो है ना वो डॉक्टर भी बंद और दवाएं भी बंद, कोर्स नॉट, ठीक है, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो भाई आपको ये कहा जाएगा कि भाई आप अच्छे डॉक्टर सही डॉक्टर के पास जाए, ठीक है, तो तावीज का भी यही मामला है, ठीक है ना। इसी तरह फरमाते हैं कि दूसरी मुतअद्दद रिवायात रिवायात हदीस से खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअव्वज़ात पढ़कर दम करना साबित है, ठीक है, और सहाबा व ताबईन से मुअव्वज़ात और दूसरी आयात कुरान के जरिए मरीजों का इलाज करना लिख कर गले में डालना साबित है, ठीक है, जिसको इस आयत के तहत कुर्तुबी ने तफसील से लिखा है। अब दम करने का भी यही मसला है ना कि वो जो पीर साहब जहां पे ना तो शरीयत की पाबंदी होती है ना सुन्नतों को कोई लिहाज होता है, अब उनके पास जो है ना वो लोग सामने से गुजर रहे होते हैं, वो फू 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 कर रहे होते हैं उनके ऊपर, ठीक है, तो अब ये तो वही हो गई हर चीज की एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है ना। तो दम करना तो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से साबित था, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम तो शरीयत और अपनी सुन्नत राइट उसके साथ ही सारे काम कर रहे होते थे ना, सहाबा कराम भी इसी तरीके से, लेकिन आज के जो है वो दरगाह के पीर और इस तरह के जो है वो उलट सलट किस्म के लोग होते हैं, तो उन्होंने फूकने का जो है वो अब उनको भी पता नहीं कहाँ से इतनी फूकें आ जाती हैं उनके पास, तो वो पता नहीं कितने लोगों को फूकते रहते हैं, अब उनके सामने औरतें भी आ रही हैं राइट, तो वो औरतों के ऊपर फूक भी रहे हैं और औरतों के सर पे भी हाथ रख रहे हैं और पता नहीं और भी और क्या क्या करे चले जा रहे हैं। तो अब ये फूकना जो है ये तो भाई शरीयत के खिलाफ हो गया ना, ये तो ऐसे फूकने का तो कोई, अब वो पढ़ के फूकें या ना पढ़ के फूकें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, असल चीज तो शरीयत है, शरीयत को आप नहीं तोड़ सकते किसी का इलाज करने के लिए, ठीक है, तो वो ये बस बुनियाद याद रखें। अच्छा آخر میں ہم آتے ہیں کہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو جب اعتقاد و احترام کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا شفا ہونا جس طرح ظاہر اور ثابت ہے، اسی طرح قرآن مجید کا انکار یا بے ادبی خسارہ اور آفات کا ذریعہ بھی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر ہر چیز ہماری آزمائش کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں، جن میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اپنے رسول بھیجے اور اپنا کلام بھیجا، کلام اللہ اور رجال اللہ. ٹھیک ہے، تو اب یہ سب سے بڑی نعمت ہے، تو اب ان سب سے بڑی نعمت سے بھی تو ہماری آزمائش ہو رہی ہے نا، کہ ہم ان نعمت کا ادب کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، ان کا حق ادا کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ جو ہے وہ بے ادبی کا اور ناقدری کا اور ظلم کا معاملہ. ٹھیک ہے، اب قرآن مجید کا حق ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو پڑھیں، اس قرآن مجید کو سمجھیں اور اس قرآن مجید کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں. یہ قرآن مجید کا حق ہے، اور اگر ہم اس حق کو ادا نہیں کریں گے تو ہم ظالم کہلائیں گے، کیونکہ ظالم کی یہی تعریف ہے کہ جو کسی کا حق نہ ادا کرے، جو کسی کا حق نہ ادا کرے وہی ظالم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جتنے بڑے کا آپ حق ادا نہیں کریں گے اتنے بڑے ظالم کہلائیں گے، چھوٹے کا حق نہیں ادا کرنے والا چھوٹا ظالم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم سب کے اوپر قرآن مجید کا حق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا اور سب سے بڑھ کر اپنا خود یعنی اللہ تعالیٰ کا حق، ٹھیک ہے، یہ سارے حقوق ہیں، اور یہ ہمارا دین جو ہے یہ سارا کا سارا حقوق ہی کا نام ہے. ٹھیک ہے نا، یہ جو نماز پڑھنے کا طریقہ، یہ مسائل کا طریقہ، یہ حیض و نفاس کا طریقہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ حقوق ہیں، یہ حیض و نفاس کے، اگر ہمیں حیض، خواتین ہیں آپ ساری کی ساری، رائٹ، اگر آپ کو حیض و نفاس کے مسائل نہیں پتا تو آپ اللہ کا حق کیسے ادا کر رہی ہیں؟ رائٹ، کیسے اللہ کا حق ادا کریں گی اگر حیض و نفاس کے مسائل کا نہیں پتا، اگر نماز کے مسائل کا نہیں پتا اللہ کا حق کیسے ادا کریں گی؟ رائٹ، اگر طہارت کے مسائل کا نہیں پتا اللہ کا حق کیسے ادا کریں گی؟ روزہ، زکوٰۃ، حج، جب حج کیا فرض ہو گیا تو حج کے مسائل کا پتا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے. رائٹ، نبی علیہ السلام کا حق کہ نبی علیہ السلام نے جیسے بتایا ہے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، ویسے روزہ رکھنا، ہندوؤں کے طریقے پہ روزہ نہ رکھنا، ورنہ ہندو بھی روزہ رکھتے ہیں، کرسچنز بھی روزہ رکھتے ہیں، یہودیوں کے اندر بھی روزہ ہے، ہر قوم کے اندر روزہ ہے. نبی علیہ السلام کا کیا؟ اچھا وہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ وہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں، ہندو اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، عیسائی اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، جتنے ادیان ہیں یہ سب کے سب اللہ کے لیے عبادتیں کرتے ہیں. یہ خالی ہم نہیں ہیں جو کہ اللہ کے لیے عبادتیں کرتے ہیں، سب اللہ کے لیے عبادتیں کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کا حق کیا ہے؟ اور وہ بھی اللہ کا ہی حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجا کہ دیکھو تم مجھے راضی اسی طریقے سے کر سکتے ہو جیسا کہ میرے رسول تمہیں بتاتے ہیں. تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق روزہ رکھتے ہیں یا کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو ہم اللہ کا حق بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں، سب کا سب حقوق ہے، اور یہ سارا کا سارا کھیل ہی حقوق کا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کوئی اکیڈیمک ایکسرسائز نہیں ہے کہ اپنی معلومات میں اضافہ کر دیا اور جو ہے وہ مجھے آئی فیل گڈ اباؤٹ مائی سیلف ناؤ کہ اب مجھے یہ بھی پتا چل گیا، وہ بھی پتا چل گیا، یہ بھی پتا چل گیا. نو، یہ پیور اینڈ سمپل اکیڈیمیا کہلاتا ہے. اکیڈیمیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ نقصان ہے اکیڈیمیا کا، کیونکہ یہ حجت بن جاتا ہے ہمارے خلاف. جتنا زیادہ آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز پتا ہوں گے لیکن آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے یا عمل کی کوشش بھی نہیں کر رہے، رائٹ، تو پھر یہ آپ کے خلاف حجت ہے. کیا کیا تم نے اس علم کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، عمل تو سارے کے سارے کوئی بھی ہمیں سے نہیں کر سکتا، لیکن نیت تو کرتے ہیں نا عمل کرنے کی، رائٹ. تو اصل چیز تو یہی ہے، بس مرنے تک جو ہے نا جتنی مہلت ہے ہمارے پاس یہ محنت کر لیں، मजे जो है ना फिर कब्र शरीफ में जाकर के कर लीजिए, मजे जो है ना वो कब्र शरीफ में जाके कर लीजिएगा। इस दुनिया के अंदर मजे अगर मिल गए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, मिल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्बा अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्बा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। वरना ये दुनिया मजे की जगह नहीं है, ठीक है ना, ये टेस्ट की जगह नहीं है कि हम टेस्ट की जो है ना वो चीजें हमें खिलाते रहे और हम जो है ना वो खुश रहें, जिधर से मिठाई मिल रही है उधर ही बैठे रहें, मिठाई खाते रहें उधर बैठ कर के, ठीक है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इन आयात की जो है तफसीर पढ़ने हमने मुकम्मल करी। अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह अगली दो आयात पढ़ना शुरू करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।